بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قرآن پاک میں سب سے زیادہ آنے والی آیت جو بار بار آئی ہے سورہ رحمان میں ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالی بادشاہ ہے، شہنشاہ حقیقی. اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے پورے قرآن شریف میں ایک دفعہ کافی تھا کہ اگر یہ آیت نازل ہو جاتی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن اللہ پاک بار بار یاددانی فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ اس چھوٹی سی سورے میں 31 مرتبہ 31 ٹائمز یہ آیت نازل ہوئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں جنات، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. اتنا اہم مضمون ہے یہ شکر کا، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، کے بعد اللہ کو یاد کرنا، پھر اپنی حاجتوں میں اللہ کو پکارنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انعامات کو یاد کیجئے. اے اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انسان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. پھر اے اللہ، آپ نے پوری زمین، آسمان، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، جانور، درخت، سمندر، پوری کائنات ہمارے فائدے کے لیے بنائی. پھر اے اللہ، آپ نے ہمیں نیک آدمی بنایا اور ہم کو لنگڑا لولا، اندھا کانا، معذور نہیں بنایا. پھر ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں اور حادثات سے بچایا. پھر یا اللہ، آپ نے نیک گھر والے دیے، نیک اولاد دی، آسان روزی دی، رہنے کی جگہ دی، دوست پڑوسی رشتہ دار اچھے عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. پھر یا اللہ، آپ نے جہالت کے اندھیرے سے بچایا، علم دین سکھایا. پھر ہمارے عمل ٹوٹے پھوٹے تھے، کمزور تھے، لیکن ہمیں نعمتوں سے محروم نہیں فرمایا، اور ہم نے نافرمانی کی، گناہ کی، لیکن ہماری پکڑ نہیں فرمایا. ایسے بڑے رحیم کریم اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی جو کروڑوں عقل مندوں کو عقل دینے والے، اور لاکھوں پہلوانوں کو طاقت دینے والے، اور کروڑوں خوبصورت لوگوں کو خوبصورتی دینے والے. روزانہ کئی لاکھ بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ اس کی دو خوبصورت آنکھیں، یہ خوبصورت ہاتھ پاؤں، خوبصورت منہ، خوبصورت سر، اللہ کے خزانے سے روز چلے آ رہے ہیں، روز چلے آ رہے ہیں. کروڑوں ماؤں کو رحم دلی اور محبت دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی. آدمی کا سب سے بڑا دوست آدمی غور کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی، جو اس کو اس کی پیدائش کے وقت سے پہلے سے سنبھالنے والے اور قبر میں جانے کے بعد بھی یاد رکھنے والے، اور آخرت میں جب کے سارے دوست رشتہ دار سب ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھالنے والے. آدمی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے، اللہم لک الحمد و لک الشکر کرے. قرآن کریم اس دنیا میں ایسی نعمت ہے کہ سارا زمین، آسمان اور پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں ہو سکتی. انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی قرآن کریم کو حاصل کرنا، سب سے بڑی بد نصیبی قرآن کریم کو چھوڑنا. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم ٹھیک طرح پڑھنے والا اور بچوں کو پڑھانے والا ہو، پھر جتنا ممکن ہو اس کے معنی اور احکام کو سمجھے اور عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے، پھر اس کو دنیا میں پھیلانا، دوسروں کو پہنچانا، اور اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق قرآن کا جو حصہ نصیب ہو جائے اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھنا. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی صورتیں، رکوعات، کلمات، جملے، نقطے، اعراب، حرکات، پروننسیشن، ایک ایک الفابیٹ اس پر حرکت، پڑھیں گے کیسے، محفوظ ہے، 14 صدیوں سے قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ لیا. قرآن کریم کے نام کتنے آئے ہیں، کتاب مبین، قرآن مجید، فرقان، شفا، ذکر، مبارک، حکمت، تنزیل، علم، ہدایت، رحمت، نور، حکیم، بیان، عزیز، القرآن الکریم، صراط مستقیم، میزان، صدق، امر، बुशरा, सुहफ, रूह, अहसन الحديث, कुरान शरीफ के नाम। मदारिस में और जहाँ बच्चे हिफ्ज़ करते हैं छोटी सी किताब पढ़ाई जाती है कंजुल कुरान, उसमें कितने रुकू हैं, कितनी सूरतें हैं, कुरान में कितने अंबिया के नाम आए, कितने फरिश्तों के नाम आए, तो एक जनरल नॉलेज क्विज, तो ऐसा बच्चों के साथ हमें भी याद करना चाहिए। तो गैर मुस्लिम पूछ ले तो कुरान के बारे में उसको समझाया जा सके। आजकल कुरान गैर मुस्लिम भी खूब पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ कर झूम जाते हैं कि कैसा ज़बरदस्त कलाम नाजिल किया, कैसा ज़बरदस्त कलाम नाजिल किया, और कोई एक आयत भी झुटला नहीं सकते। उनमें से जिसको अल्लाह तौफीक दे दे तो इस्लाम में आ जाते हैं। उम्मत के फजाइल, फजाइल उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटे छोटे से अमल पर बड़े बड़े सवाब का वादा किया गया। मौलाना आशिक इलाही साहब दामत बरकातों की एक छोटा सा रिसाला है उम्मत के फजाइल, फजाइल उम्मत मोहम्मदिया। हदीस शरीफ में आया कि जो आदमी तहज्जुद पढ़ने की नीयत से सोया फिर आँख ना खुल सकी उसको तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसने आयशा की नमाज जमात से पढ़ी उसने गोया आधी रात नमाज पढ़ी, जिसने सुबह की नमाज भी जमात से पढ़ ली गोया उसने सारी रात नमाज पढ़ी। बाजमात नमाज में जितने ज्यादा आदमी हो उतनी फजीलत बढ़ती है, और एक जितनी बड़ी जमात हो उतनी अल्लाह को ज्यादा पसंद है। जो भी मुसलमान कोई पौधा लगाए या खेती लगाए फिर कोई इंसान या परिंदा या जानवर उसमें से खा ले, बाग लगाया था अपने लिए परिंदा आके खा गया तो वो उसके लिए सदका हो गया, यहाँ तक कि जो चोरी हो जाएगा वो भी सदका होगा। तो फायदे से कभी खाली नहीं, खुद खा लिया कोई और खा लिया फायदा ही फायदा, सवाब। खाकर शुक्र करने वाला रोजा रख कर सब्र करने वाले के बराबर, रोजा रख के सब्र करना मुश्किल काम है इसका सवाब है। और मैं तुम खा के अल्हम्दुलिल्लाह कह लो तुमको वही सवाब दे। जिसने जुमे के रोज गुसल किया और शुरू से खुतबे में शरीक हो गया, सवेरे गया पैदल गया, जुमे के आदाब बताए जा रहे हैं, सवेरे गया पैदल गया सवार ना हुआ, ध्यान से खुतबा सुना, कोई लग्व बेकार काम नहीं किया, तो उसके लिए हर कदम के बदले साल भर के रोजे रखने और साल भर रात को नमाज में कयामुल लैल करने का सवाब मिलेगा, हर कदम पे मिल रहा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि पूरे सहा सित्ता में इतनी फजीलत की हदीस हमने कहीं नहीं पाई कि जुमे के लिए जाने में हर कदम के बदले एक साल के रोजे रखने का सवाब और एक साल को रात को नमाज पढ़ने का सवाब। जिस आदमी ने अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए घोड़ा पाला, पहले जमाने की सवारी, घोड़ा पाल कर रखा कि इस अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, तो घोड़े का पेट भरना, घोड़े का पानी पीना, घोड़े का हत्ता के पेशाब करना, इन सब चीज़ों का जो वजन है उसके बराबर सवाब उस आदमी की तराजू में होगा, उसके बराबर सवाब उसके तराजू में होगा। माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाली औलाद जो अपने वालदैन की तरफ एक मरतबा रहमत की नज़र से देखे तो हर नज़र के बदले अल्लाह सुबहानहु व तआला एक मकबूल हज का सवाब लिख देंगे, हर नज़र के बदले। सहाबा ने सवाल किया अगरचा रोज़ाना 100 मरतबा नज़र करें, इरशाद फरमाया कि अल्लाह बहुत बड़ा है और नुकसान से पाक है, जितनी दफ़ा नज़र करेगा उतना सवाब मिलेगा। मिशकात शरीफ की हदीस, जिस नमाज के लिए मिसवाक की जाए वो उस नमाज से 70 दर्जे बढ़ी हुई है जो बग़ैर मिसवाक के की जाए, बगैर मिसवाक के पढ़ते एक साल में कोई 18,000 नमाज का सवाब होता, मिसवाक करके पढ़ ली सवाब कहाँ लाखों में पहुंच गया और 2 मिनट भी नहीं लगते आगे। छोटे छोटे अमल पे बड़े बड़े अमल का सवाब। हज से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं और एक नमाज से दूसरे नमाज तक जो गुनाह हो जाए वो नमाज से माफ हो जाते हैं। जो कोई वजू करे अच्छी तरह वजू करे तो उसके जिस्म से गुनाह ऐसे निकल जाते हैं कि हत्ता कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। गुनाह और तेरे गुनाहों के लिए आदमी तौबा करे, माफी मांगे। अरफा के दिन रोजा रखना 9 ज़िलहज को, जो हज के अय्याम है, हाजी हज को गए जो नहीं जा पाए तो रोजा ही रख ले कम से कम। अरफा के दिन रोजा रखने से एक साल के पिछले और एक साल के आइंदा गुनाहों का कफारा हो जाएगा, और आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा रखने से एक साल के पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। ज़रा ज़रा से अमल पर जन्नत का वादा किया गया और जन्नत में महल बनाने की खुशखबरी दी गई। हदीस शरीफ में आया जो आदमी मौजिन के अजान का जवाब दे दे उसके लिए जन्नत है। आदमी पहले से मस्जिद पहुंच जाए, मैं अजान का जवाब दूंगा। एक हदीस में आया कि जो वजू करे अच्छी तरह फिर ये पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। एक जगह फरमाया कि जिसने 12 रिकत चाश्त की नमाज पढ़ ली तो जन्नत में एक सोने का महल मिलेगा। एक जगह फरमाया कि मगरिब के बाद और फजर के बाद किसी से बोलने से पहले नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ लें अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, फिर अगर उस दिन इंतकाल हो गया तो जहन्नम में नहीं जाएगा। छोटे छोटे अमल पर बड़े बड़े सवाब। और बंदा कोई नेक अमल करना चाहता है तो सिर्फ नीयत करने पर एक नेकी मिल जाती है, और जब अमल करने लगता है तो अमल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका अलग सवाब है। वजू करने का अलग सवाब है और मस्जिद जाने का अलग सवाब है और अंधेरे में मस्जिद जाने का अलग सवाब है और अभी नमाज के इंतजार में जाके बैठने का अलग सवाब है। बाजमात नमाज का सवाब तो अलग। तो शेख ने लिखा कि अल्लाह सुबहाना व ताला से मामला करके कोई नुकसान में क्या रहता, इतना नफा मिलेगा जो उसके वहमो गुमान में नहीं होगा। अल्लाह से मामला हो रहा, दुनिया के बादशाह खुश हो जाएं तो आदमियों कहते हैं मियाँ इसको सोने में तौल दो, गोल्ड में, एक तरफ इसको रखो स्केल में, एक तरफ गोल्ड रखो, इतना गोल्ड इसको दे दो, अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे तो कितना दे। भाई अल्लाह पाक हम सबसे राज़ी हो जाएं, और दीन को पूरा सीखना है, उस पर अमल करना है और उसको फैलाना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी मोहतरम बहनें जो सुन रही हैं, जब भी कोई नेक काम कीजिए, इबादत या हदीस पढ़िए, तो अल्लाह का नाम लेके इस्तिग़फ़ार कीजिए कि ए अल्लाह, हमारे अंदर जितनी गंदगियां हैं, बुराइयां हैं, हमारे दिल दिमाग में, ख्यालात में, तसव्वुर में, सोचने में, हम उन सब से सफाई चाहते हैं। इस्तिग़फ़ार करके पढ़ें, और हर दफ़ा नीयत देखें कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमारी नीयत क्या है। नीयत यह है कि अल्लाह पाक उम्मत के हर भाई और बहन से राज़ी हो जाए, मुकम्मल दीन हम सब की ज़िंदगी में आ जाए, हमारी तौबा कबूल हो जाए, शैतान और नफ्स के बहकाने से बच जाएं, गुनाह और नाफरमानी से बच जाएं, गफलत और सुस्ती और काहली जो हमारे ऊपर छा गई है वो दूर हो जाए, और हर वक्त की दुआ, जिक्र और अच्छी नीयतें हमें मिल जाएं, ज़िंदगी में सुन्नत तरीक़े आ जाएँ, इबादत, माशरत, अखलाक सब ठीक हो जाए सुन्नत तरीक़े पर, सिरात मुस्तकीम पर आ जाएँ, नफ्स मुतमईना हो जाए, अल्लाह पाक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमारी तबीयत बन जाए, दलील की ज़रूरत ही ना पड़े, मियाँ समझा रहे हैं, मियाँ ये ज़रूरी है ज़रूरी है, आदमी मानता ही नहीं, भाई किस किताब में लिखा है, कहाँ लिखा है, पता है फलां तो कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं, ऐसा नहीं हो, बल्कि किसी चीज़ की दलील की ज़रूरत ही नहीं पड़े। सहाबा का जैसे मिजाज था कि सहाबा समझते थे कि आज ये हुक्म आ गया बस मान लिया, यानी अल्लाह पाक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी आ जाए कि अब हर हुक्म ऐसा लगे कि मेरा भी दिल यही चाहता है, जो अल्लाह को पसंद मुझे भी वही पसंद। ये दीन सीखने का ऐसा शॉर्टकट है कि आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है चंद दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पर आ जाए, नेकी फैलाने का जज्बा हो जाए, सारी उम्मत की खैरख्वाही हो जाए, और दुनिया में हयात तैयबा हो, पाकीज़ा ज़िंदगी की अलामत सेहत, सलामती, अमन, चैन, आसान रिस्क, दुआओं की कबूलियत, और आखरत में आसान हिसाब मिले, मग़फ़िरत, जन्नतुल फ़िरदौस में रहना नसीब हो जाए। दीन के बड़े बड़े काम नीयत ख़राब होने से बिगड़ जाते हैं, काम बहुत ऊंचा था, नीयत ठीक नहीं थी, ये नीयत ठीक करनी चाहिए, और छोटे से छोटे काम अच्छी नीयत से सवाब बन जाते हैं, पहाड़ों जैसा सवाब लिया जाता है। इसलिए अमल भी ठीक हो सिद्क़ को कहते हैं, और नीयत भी ठीक हो उसको कहते हैं कि अखलाक। अल्लाह पाक हमें भी अता फरमा दे, ये सब चीज़ों की याद दहानी है कि ये बार बार मुज़ाकरे से हमारे अंदर आ जाएँ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वल्लाह मैंने जब किसी से मुनाज़रा किया, यानी कोई डिस्कशन की, डिबेट की, कभी ये ख्वाहिश नहीं रखी कि दूसरे आदमी से गलती हो। हम किसी को समझा रहे थे, वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि दूसरे आदमी से गलती ना हो, उसके लिए अपनी खैर ख्वाहिश। फरमाया कि जो इल्म मुझे अता हुआ, मेरी ख्वाहिश ये रही कि ये इल्म हर आदमी के पास हो और मगर उसकी निस्बत मेरी तरफ ना की जाए। दूसरी जगह फरमाया कि मेरी ख्वाहिश ये रही कि मखलूक को दीन का सही इल्म हो जाए और उनमें से कोई बात मेरी तरफ मंसूब ना की जाए, एक जगह फरमाया इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरी ख्वाहिश है कि जो इल्म मुझे हासिल है वो लोग सीख लें, मुझे उस पर सवाब तो मिले लेकिन वो उस पर मेरी तारीफ ना करें। हम हर वक्त चाह रहे हैं कि लोगों को इल्म पहुंच जाए लेकिन वो जानते ना हो कि कहाँ से आया, मेरा जिक्र और नाम बीच में ना हो और सवाब मिल जाए, ऐसी ऊँची ऊँची नियत। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल होने लगा तो शेख मिलने आए, पूछा क्या हाल है। फरमाया दुनिया से जा रहा हूँ, दोस्तों को छोड़ रहा हूँ, मौत का प्याला पीना है, अल्लाह के पास जाना है और अपने बुरे आमाल का डर है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, पूरी ज़िंदगी इबादत रियाजत में फिक्र में और ऊँचे मकाम पर गुजारी, फरमा रहे हैं अपने बुरे आमाल का डर है, कुछ मालूम नहीं मेरी रूह जन्नत में जाएगी तो उसे मुबारकबाद दूँ या जहन्नम में कि उससे ताज़ियत करूँ। फिर रोने लगे और आसमान की तरफ देखकर अशआर पढ़े। उनका तर्जुमा है कि ऐ मखलूक के परवरदिगार, मैं आप ही से दुआ करता हूँ, ऐ एहसान और अता के पैकर, अगरचा मैं मुजरिम हूँ, मेरे गुनाह भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब मैं उन गुनाहों का आपकी मगफरत से मुकाबला करता हूँ तो आपकी मगफरत बढ़ी हुई। मेरा दिल सख्त हो गया, रास्ते चारों तरफ से बंद हो गए, अब तो उम्मीद मगफरत ही मेरे लिए सीढ़ी है। ऐ अल्लाह, आप हमेशा से माफ़ करते चले आए हैं और आपका अफ़ माफ़ी और मगफ़रत मुसलसल है जो सरापा एहसान और करम। अल्लाह को याद करें, अपने अपने गलतियों को देख रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद रखते हुए दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अल्लाह, इंसान बज़ाहिर गोश्त पोस्त का मजमूआ है, अपने दिल की दुनिया पे मेहनत करे, ईमान अमल में कोशिश करे, हर लम्हा हर नज़र हर हरकत हर बात में सच्चाई और इखलास अल्लाह की रज़ा की कोशिश करे तो आदमी फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाएगा, आदमी फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाएगा। जिसको फरमाते हैं कि ऐसे लोग औलिया अल्लाह होते हैं कि अगर वो दामन न छोड़ें अपने कपड़े को तो फरिश्ते आके वजू करें, उसको दामन न छोड़ें तो फरिश्ते आके वजू करें। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया लेकिन नबूवत का काम बाकी है, उसको फैलाना, और औलिया और अल्लाह के नेक बंदे उनके दर्जात अभी भी हासिल किए जा सकते हैं। और उसके दो रास्ते हैं, एक ये है कि जिसको अल्लाह पाक मुंतखब कर लें उसके दिल की दुनिया पलट देते हैं, हिदायत दे देते हैं, उसके लिए दुआ की जाए अल्लाह मेरे दिल को ही पलट दीजिए। और दूसरा रास्ता यह है कि जो मेहनत करता है उसको पहुँचा दिया जाता है, लदीना जाहदू कीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते मेहनत करेंगे हम ज़रूर भी ज़रूर उनको रास्ते दिखा देंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। उसके बाद तशरीह करते हैं मशायख कि हम हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, कोई नियत करे, कोई कोशिश तो करे, अल्लाह के हुक्मों को ज़िंदगी में लाने की मेहनत करे, कोशिश करे, ज़िंदगी का जायज़ा ले कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, दीन हमारे घरों में ख़ानदान में पूरी उम्मत में आ जाए। तो दीन की बात जब भी बैठें बहुत अदब से और एहतराम से सुने, इस रास्ते में अदब का बहुत मुकाम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वालदा जब वो छोटे थे तो उनको बचपन में इमामा बांधती सर पर और उनको मस्जिद में भेजती कि जाओ वहाँ तालीम हो रही है हल्के में बैठो, मुझे मालूम है कि अभी तुम बहुत छोटे हो अभी कुछ नहीं सीखोगे लेकिन अदब सीखोगे वहाँ बैठने का, बैठना सीखोगे, शौक़ पैदा हो। तो इल्म दीन का मकसद अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना है। दीन सीखना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, सहाबा ने तकरीबन कितने साहब हैं बड़ी उम्र में सीखा, 50-50 साल के हैं, 60-60 साल के हैं, सूरतें सीख रहे हैं, अत्तहियात सीख रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठे हैं। तो असल जो दीन का सीखना है असहाबे सूफा वो बच्चे थोड़ी थे, दीन का सीखना जो है वो बड़ों के लिए है। इस ज़माने में सिर्फ उसको उल्टा समझ लिया कि बच्चे तो सीखते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तो ज़बरदस्त जहानत होती है, उम्र होती है सीखने की, लेकिन बड़े भी दीन को सीखें। बेहतरीन इल्म दीन सीखने वाले कोई बावजू है, सब काम छोड़कर मुतवज्जा है, क़िबला रूह है। दो बच्चे पढ़ते थे, उनका IQ भी सेम, उनका वज़न भी वैसा ही और उनकी एज भी एक जैसी और सब चीज़ें, खाना पीना रहना सहना आमदनी सब चीज़ ठीक थी। एक बच्चे के बहुत नंबर आए, एक बच्चे के कम आए। जाकर उन्हें देखा कि बस क्या मसला है, यानी दीनी चीज़ें सीखते थे दीनी मदरसे में, तो मालूम हुआ कि कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों बच्चों में, सिर्फ बात यह है कि एक बच्चा जो है वह क़िबला रूह होकर सबक याद करता है और दूसरा क़िबला रूह होकर नहीं याद करता। छोटा सा एक अदब जिसमें एक आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच। भाई ध्यान हो, तलब हो, शौक़ हो, अल्लाह पाक हम सबको अता फरमा दे, अता फरमा दे। उसके लिए अपने दिल को खाली करना और मखलूक के जिक्र से बाहर निकल कर अल्लाह के जिक्र में लगना, इसलिए कुछ सुबह शाम की दुआएं, कुछ तस्बीहात बार बार याद दहानी की जाती है कि ये पढ़ ही जाएं, उससे आदमी का दिल साफ होगा, नेकियों की रغبت होगी, शौक पैदा होगा। तो यहाँ पर सिर्फ याद दहानी के तौर पर बताए जाते हैं, दुआओं के कार्ड होते हैं, दुआओं की किताबें होती हैं। जो आदमी सुबह शाम सूरह अल हशर की आखिर की 3 आयत पढ़ लेगा तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे। उस दिन उसका इंतकाल हुआ तो शहीद का दर्जा मिलेगा। दीन, दुनिया, मौत, कब्र, मीजान, हौज कौसर और पुल सरात में कामयाबी हासिल करने की कुरान 7 मरतबा आदमी पढ़ ले सुबह और शाम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्श। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्श। गुनाहों का कफारा अगरचा समुंदर के झाग के बराबर हो, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। 3 मरतबा पढ़ लीजिए। बीमारियों से तहफ़ुज़, जुजाम, जुनून, अंधापन और फालिज से बचाव की दुआ 3 मरतबा आदमी सुबह पढ़ ले। सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुबह हम देखते हैं कि नमाज के बाद लोग मस्जिद में बैठे रहते हैं और ये दुआएं पढ़ते रहते हैं, दुआएं पढ़ते रहते हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ दिया, आज उम्र का सवाब मिला। एक किताब में पढ़ा और मुफ्ती साहब से उसकी तस्दीक कराई गई, उसमें लिखा हुआ था शेख के तजुर्बात कि फजर की नमाज के बाद फौरन मस्जिद से निकल जाना, खास फजर की नमाज के बाद, ये रिस्क में महरूमी का सबब है। रिस्क में महरूमी या आदमी के हाफजे में कमी है, इस किस्म की चीज़ें नुकसान है। अभी नमाज ख़त्म हुई मस्जिद से बाहर कुछ देर बैठे हो, दुआ करो अल्लाह के पास। एक शेख ने एक आदमी को देखा कि अभी सलाम फेरा इमाम ने और आदमी उठ के दौड़ने लगा। उसने पकड़ लिया उसको, भाई कहाँ जाते? उसने कहा कि जंगल में लकड़ियां काट ली हैं, बांध भी ली हैं, रख कर आया हूँ, महफूज जगह है, बस जाना है और उसको कहीं जाके पहुँचाना है। उसने कहा कि तुमको अगर और कोई दुआ नहीं आती, याद नहीं है, तो अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मैं कब तक लकड़ियां काट काट के ला कर पहुँचाता रहूँगा, मेरा कोई और इंतजाम कर दीजिए, यही दुआ मांगो। मगरिब और फजर के बाद ये 7 मरतबा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ये जहन्नम से बचने की दुआ है। और इस तरह सुबह में और शाम में जो 10 मरतबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द यहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। बड़े बड़े सवाब मिले। और इस कलमे को, चौथे कलमे को बाजार में पढ़ लें तो 10 लाख नेकियाँ मिले, जन्नत में महल मिलेगा। लोग परेशान हैं मखलूक के शर से, 3 मरतबा यह हदीस शरीफ की दुआ है, ये पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। हर तकलीफ और नुकसानदेह चीज से हिफाजत के लिए अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक। और ये पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये 99 हाजात पूरी करने के लिए है और अर्श के ख़जाने से निकाला गया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आदमी को डिप्रेशन है, परेशानी है, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़े, अर्श के ख़जाने में से आ गए। अब ये जितनी चीज़ें पढ़ी गई कोई नई चीज़ नहीं थी, मालूम ही है, कहीं है, हमारे पास भी है, किताब में, घर में है, भाई उसको जेब में रखें और उसका रोज़ाना मामूल। अल्लाह के नेक बंदे होते हैं कि एक बात मालूम हो गई, पूरी ज़िंदगी के लिए वजीफा बना, लेकिन ये आज से तो छोड़ना ही नहीं। जैसे कोई आराबी आते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, तो उनको एक छोटी सी कोई चीज़ बताई जाती थी, वो ऐसा खुश होकर जाते थे, बस मुझे आज के बाद इसको छोड़ना ही नहीं, बस मैंने पकड़ लिया, तो उसको फिर बशारतें मिलती थी, देखो भाई ये आदमी का, छोटी सी बात होती। सैयदुल इस्तिग़फ़ार आदमी पढ़ ले सुबह और शाम, तो हदीस शरीफ में आया, बुखारी शरीफ में, नसाई शरीफ में फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी इस इस्तिग़फ़ार को दिन में पढ़ ले और रात से पहले मौत आ जाए तो अहले जन्नत में से होगा, जो रात को पढ़ ले सुबह होने से पहले मौत आ जाए तो वो भी अहले जन्नत में से होगा। शेख फरमाते हैं कि मियाँ जो इतनी ऑथेंटिक मुस्तनद हदीस में यह रवायत आई है तो मियाँ अल्लाह का कुछ मंजूर ही होगा, इसलिए पढ़ा करो हर नमाज के बाद। इतना जोर देकर बताया बुजुर्गों ने कि अल्लाह को कुछ मंजूरी होगा इसलिए इसको पढ़ो। اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے اس علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، میں آپ ہی کا بندہ ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں آپ کے عہد اور آپ کے وعدے پر قائم ہوں، اور میں اپنے اعمال کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کے سامنے آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بس آپ مجھے بخش دیجئے کیونکہ میرے گناہوں کو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا. شیخ نے لکھا، مولانا حکیم اختر صاحب نے ان کے معمولات میں ہے یہ، کہ اس استغفار کی فضیلت کا راز یہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے، ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے. رمضان میں اللہ پاک توفیق دیں سب کو، لوگ رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں، دن میں روزہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے، اس کے بعد رات تک صرف 2 گھنٹے نماز ہوتی ہے، 2 گھنٹے نیند ہوتی ہے صرف، تو اس کے باوجود لوگ اتنے حشاش بشاش خوش رہتے ہیں، یہ رمضان ہے. تو رمضان کے بعد وہی آدمی ہے، اس کو چاہیے کہ نوافل میں کوشش کرے، نوافل میں اور اس طرح کے نیک کاموں میں کوشش کرے. نوافل کے بارے میں ایک دو باتیں پڑھی جائیں گی. عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رات کو بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے کہ خدا کی قسم تو بہت نرم ہے، لیکن جنت کے بستر تجھ سے زیادہ نرم ہے. یہ کہہ کے نماز میں مشغول ہو جاتے، یہ کہہ کے نماز میں مشغول ہو جاتے. کتاب ہے جنت کے نظارے اور جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے، اس میں شروع میں مصنف نے اس کتاب کے اوپر ایک حدیث شریف لکھی، ترمذی شریف کی. اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا کہ میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والے سوئے پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کے چاہنے والے سوئے پڑے ہوئے ہیں. چاہتے تو بہت ہیں جہنم سے بچ جاؤں، لیکن حال کیا ہے، سوئے پڑے. چاہتے بہت ہیں جنت میں چلا جاؤں، لیکن حال کیا ہے، سوئے پڑے. حدیث شریف میں ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی جس کے جہنم سے بھاگنے والے سوئے پڑے ہوئے، بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور جنت میں جانے کی کوشش کرنے والے وہ بھی سوئے پڑے ہوئے، جانے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک شیخ تھے صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ، پوری رات نماز پڑھتے، جب آخر سحری کا وقت ہوتا تو ایسے دعا کرتے کہ اے اللہ، مجھ جیسا سیاہکار اور گنہگار جنت کا طالب نہیں ہو سکتا، تو میری کیا مجال کہ میں جنت کا سوال کروں، کہ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے بچا لی. پوری رات عبادت کر کے ایسے دعا. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ 98 سال کی عمر پائی، کبھی بھی ان کو لیٹا ہوا نہیں دیکھا گیا سوائے موت کے. شیخ ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ 1 سال مکہ مکرمہ میں رہے، نہ تو سوئے، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی ستون اور دیوار کی طرف ٹیک لگائی، نہ اپنے پاؤں پھیلائے. 1 سال تک حرم شریف میں رہ کے عبادت کرتے. اللہ، پہلے زمانے کے لوگوں کے قوا بھی مضبوط تھے، اور ہم نیت کریں، تھوڑی تھوڑی کریں، ہمارے کمزور عمل پہ اللہ پاک بہت ثواب عطا فرمائے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، رات کو آپ کچھ دیر آرام فرما لیا کیجیے. انہوں نے فرمایا، صاحب و جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام اللیل فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، پیر پھول جاتے تھے اور ان میں سے خون ٹپکنے لگتا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے جا چکے تھے. پھر میں کیسے سو سکتا ہوں جبکہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرا ایک بھی گناہ معاف ہوا ہے. کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روزانہ مخاطب کرے، یہ میرے نفس، تمہیں کھلایا پلایا، تم کو نگہداشت کی، تم کو جم لے گیا، تم کو اتنی اچھی صحت دی، اب جو ہے اب چلو اب اللہ کی عبادت. بڑے بزرگ یعنی بہت بڑی عمر میں اب رات کو تہجد کو اٹھنا چاہتے ہیں تو مشکل ہو گئی، اٹھے لیکن کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، تو انہوں نے اپنے نفس کو بہلایا، انہوں نے کہا میاں نیند تو ٹوٹ ہی گئی ہے، ایسا کرو کہ چلو دعا ہی کر لو. کچھ دعا کرنے لگے، उन्होंने थोड़ा सा बहलाया अपने नफ्स को कि मियाँ उठ भी गए और दुआ भी कर ली, क्या ही अच्छा होता कि वजू भी कर लेते। चलो जरा वजू करा, अपने आप को घसीटते हुए ले गए, वजू करा के लाए, फिर बैठ गए। तो फिर अपने आप को मुखातिब किया कि मियाँ उठ भी गए, वजू भी कर ली, दुआ भी कर ली, अगर दो रिकत पढ़ ही लेते तो क्या हो जाता, दो रिकत पढ़ ली। फिर कहा मियाँ अगर दो और भी हो जाए तो क्या है, दो और पढ़वा ली। करते करते पूरा मामूल अपना पूरा कर लिया, हालांकि बीमारी से मुश्किल। तो आदमी को अपने नफ्स को थोड़ा सा बहलाना पड़ता है। ये बात इसलिए ऐसी गई कि रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह एक सज़ा होती है पूरी मस्जिद में, कम्युनिटी में, और शैतान भी बंद होते हैं, लोगों को शौक होता है। लेकिन उसके बाद आदमी वही है, उसकी ताकत सेहत वही है, अगर थोड़ी कोशिश करे तो वहीं पर पहुँच सकता है। अल्लाह पाक हमें हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती अब्दुल रऊफ सखरवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका दामत बरकात हो, उनकी किताब है तिलावत कुरान के इनामात। उसने लिखा कि हदीस शरीफ में वाक़या आया कि जब कोई आदमी ईशा के बाद अपने घर जाता है तो उसके साथ शैतान भी जाता है। अब वो घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो शैतान बाहर खड़ा रह जाता है, फिर आदमी अंदर जाके खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो शैतान बिल्कुल मायूस हो जाता है और दूसरे शैतानों से कहता है कि मैं तो इस घर में इसलिए आया था कि मुझे रात गुजारने की जगह मिल जाएगी और खाना भी मिल जाएगा, मगर अफसोस यहाँ मुझे ना खाना मिला और ना रात गुजारने का मौका मिला, अब मैं कहीं और जाता हूँ, देखो कहीं और जगह मिल जाए, शैतान बाहर से चला गया। हजरत ने एक वाकया लिखा है कि एक मरतबा दो शैतानों की आपस में मुलाकात हो गई। एक शैतान इतना मोटा ताजा था कि बिल्कुल हाथी बना हुआ, और दूसरा इतना दुबला पतला कि सूख कर कांटा हो गया था। मोटे शैतान ने पतले शैतान से पूछा कि कमबख्त तू इतना कमजोर अमरियल क्यों हो रहा है? उसने कहा क्या बताऊं, मेरी ड्यूटी ऐसे मुसलमान पे लगी हुई है कि उसकी जबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम रहता है, जब खाना खाता है तो अल्लाह का नाम लेता है, पानी पीता है तो अल्लाह का नाम लेता है, चाय पीता है तो अल्लाह का नाम लेता है, फल खाता है तो अल्लाह का नाम लेता है, तो उस चीज में मेरा कुछ हिस्सा ही नहीं रहता। तो नतीजा ये हुआ कि मैं दिन रात भूखा रहता और जब खाऊंगा नहीं तो कमजोर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी उसके साथ है, और नतीजा ये है कि वो अल्लाह का नाम लेके मुझे महरूम करता रहता है। मोटे शैतान ने कहा कि मेरी ड्यूटी तो ऐसे आदमी के साथ है जो अल्लाह का नाम ही नहीं जानता, अल्लाह का नाम लिए बगैर खाना खाता है, बगैर अल्लाह का नाम लिए पानी पीता है, तो मैं भी डट के खाता हूँ और मुझे खूब जो है खूब खाने को मिल रहा है, इसलिए खूब मोटा। अल्लाह, शेख ने लिखा पहले मुसलमानों का आम मामूल होता था कि सुबह सवेरे उठते ही मर्द औरत बच्चे सब कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, जब तक कुरान की तिलावत ना कर लेते, नाश्ता ना करते, खेती बाड़ी ना करते, मुलाजमत ना करते, तिजारत ना करते, पहला काम फजर की नमाज पढ़ना, दूसरा काम कुरान शरीफ की तिलावत करना। उस वजह से घरों में बरकत होती थी, अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी, हर काम में सहूलत और आसानी होती, कलाम पाक की बरकत से शयातीन भागते हैं, नज़र उतर जाती है, जादू कट जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस शरीफ में मफहूम कि सूरह अल बकरा की तिलावत किया करो, इस सूरह को लेना बरकत है, उसको छोड़ना हसरत है, बातिल परस्त लोग यानी झूठे लोग उसके सामने बेबस हो जाते हैं। जिस घर में कुरान पाक नहीं पढ़ा जाएगा फिर वहाँ जादू आसेब और नजरें अपना रंग दिखलाएंगी और घर में बेचैनी, बेकरारी, परेशानी, मुसीबतें ही रहेंगी। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की इज्जत करना, कुरान पाक को पढ़ना और फैलाना नसीब करना है। आमीन। हज के फजाइल पढ़े जाएंगे, बहुत से भाई बहन और फैमिलियाँ हज को तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए उनके दुआएं और हज को आसान फरमाए। हज के फजाइल चंद एक पढ़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलसल हज और उमरा करते रहो, एक दफ़ा की बात नहीं हो रही, फरमाया मुसलसल हज और उमरे करते रहो, कंटिन्यूस मुसलसल हज करेगा कि रोज़ तो नहीं होता, साल में एक दफ़ा इंकरेज किया कि मुसलसल हज और उमरे करते रहो, क्योंकि ये फ़क्र यानी गरीबी और गुनाहों को ऐसा ख़त्म कर देता है जैसा लोहे सोने और चांदी की गंदगी को आग की भट्टी ख़त्म कर देती है, और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حاجی کا اونٹ یعنی سواری جب بھی اپنے قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے تو اللہ حج کرنے والے کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک حاجی اپنے گھرانوں کے، یا یہ فرمایا کہ 400 گھرانوں کی شفاعت کرے گا، 400 گھرانوں کی شفاعت کرے گا، گناہ سے ایسا پاک و صاف ہوگا جیسا پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک و صاف تھا۔ حدیث میں فرمایا کہ حاجی کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بھی جس کے لیے حاجی بخشش طلب کرے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ حاجی کو بخش دیجئے اور اس کو بھی بخش دیجئے جس کے لیے حاجی بخشش کی دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کی جو سواری جو قدم اٹھاتی ہے اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ جب میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے پراگندہ بال غبار آلود کپڑوں کے ساتھ میرے دربار پر حاضر ہوئے، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، چاہے وہ رائی کے دانوں اور بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب وہ یعنی حاجی کنکریاں مارتا ہے تو کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کتنا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اور جب وہ طواف وداع یعنی آخری طواف واپس آ رہا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا۔ فرمایا کہ حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو کہ ان کا مسلسل کرنا عمر کو بڑھاتا ہے اور فقر اور گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ فرمایا کہ بوڑھے کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو جو سن رہے ہیں کو ہے جب بیت اللہ بار بار عمرہ شریف اور زیارت مدینہ پاک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اللہم صلی اللہ محمد۔ بقیہ وقت میں کچھ بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ باتیں، ایک درخواست آئی تھی کہ کچھ مضمون پڑھا جائے اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور درود شریف کی فضیلت یہ پڑھی جائے گی۔ اب یہ بہت فائدے کا مضمون ہے، اس میں کوئی چیز لکھنے کی بھی ہوگی، اگر کوئی لکھنا چاہیں تو اپنے کو اپنی قلم لے کر بیٹھ جائیں۔ یہاں حلقے میں ہر چیز بزرگوں کی مشائخ کی کتابوں سے ہی پڑھی جاتی ہے، جو بات مستند ہو اور جو پہنچی، تاکہ شوق پیدا ہو جائے۔ خواتین اسلام کے فضائل، اور اس میں بچوں کی تربیت کا مضمون بھی آ گیا۔ فرمایا کہ تربیت بچوں کی وہی اچھی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے کی جائے اور بچوں کو روزانہ شروع دن سے ہی چلانے کا اس اہتمام کیا جائے۔ اگر بچوں کو کم عمری میں دینی احکام پر چلنا سکھا دیا تو بڑے ہو کر خود بخود چلیں گے، اگر انتظار کرے کہ بڑے ہوں گے تو کہیں گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے ہو کر اپنے ماحول کے مطابق کوئی دوسری لائن اختیار کر لیتے ہیں، پھر والدین سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا۔ اس لیے بچوں کو شروع سے ہی اچھے ماحول اور اچھے دوستوں کی طرف لگانا چاہیے۔ والدین بچے کی تربیت اور دینی مزاج اسی وقت بنا سکیں گے جب ان کا اپنا دینی مزاج بنا ہو۔ جتنے اولیاء اور صلحاء گزرے ہیں ان کے ابتدائی حالات میں گھر سے اور بالخصوص ماں کی گود سے ملنے والی تربیت نمایاں نظر آئے گی۔ ان کا دینی جذبہ، علم کا شوق، قرآن پاک کی کثرت، تلاوت، ذکر اذکار کا اہتمام اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ، جیسے صدقات ہوئے، اور نمازوں میں خشوع اور خضوع۔ تو تاریخ میں مردوں کے ساتھ بہت سی ایسے مکمل پردہ کرنے والی خواتین گزری ہیں جنہوں نے پردے میں رہتے ہوئے ایسی خدمات انجام دیں کہ مردوں کو بھی نصیب ہوئی۔ ایک نے ایک واقعہ لکھا کہ دین پھیلانے میں قرآن شریف کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف انڈیا میں کس طرح آئی، پاکستان انڈیا میں کون لے کے آیا؟ فرمایا کہ بخاری شریف ہندوستان میں اور اکثر علمی مراکزوں میں جس روایت سے پہنچی ہے وہ ایک فاضلہ خاتون ہے، اس کا نام تھا کریمہ۔ ایک خاتون کی روایت سے انڈیا میں تو پوری بخاری شریف نقل ہو کر آئی۔ فرمایا کہ صحیح بخاری کی خاص راویاں ہیں اور سب سے اونچی سند انہی کے ذریعے ہے۔ ان خاتون نے 100 سال کی عمر پائی، उनका इंतकाल मक्का मुकर्रमा में हुआ, उम्मुल किराम और बिंतुल किराम के लकब से मारूफ थे। फिर सहाबा सहाबियात के ज़माने को देखिए, तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, और इस्लाम के लिए जान कुर्बान करने वाली सबसे पहली शहीद हज़रत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा, एक तरफ इल्म व अमल का पहाड़ आयशा रदी अल्लाह अन्हा, और उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हो जिन्होंने इस्लाम को कोने कोने दुनिया में पहुंचाया, उनकी हिदायत का जरिया कौन बना? उनकी बहन फातिमा बिनत खत्ताब। और एक माँ ऐसी गुजरी हैं सहाबियात में, हज़रत खनसा रदी अल्लाह अन्हा, उनके चार जवान बच्चे थे, उन्होंने चारों को अल्लाह के रास्ते में भेजा एक एक करके, और शौक जाहिर किया कि आप जाके शहीद हो जाओ। सब शहीद हो गए तो उनकी शहादत पे फख्र कर रहे हैं। ऐसी माँ, चार जवान बच्चों को एक साथ भेजा अल्लाह के रास्ते में, जाके शहीद हो गए तो खुश हो रहे हैं। 20-20 साल 25 साल उनकी तरबियत की, बड़ा किया और अल्लाह के रास्ते में भेजा। तो ऐसी ऐसी नेक सीरत खवातीन और उनकी कोशिशें और तरबियत से निकलने वाले बड़े बड़े उलमा, सुलहा, औलिया, मशायख इकराम आए। इन चीज़ों का चर्चा हो बार बार, ताकि हमारे महलों में, ख़ानदानों में जो आइंदा नस्ल आने वाली है, तो उनको शौक़ पैदा हो जाए दीन का। हदीस शरीफ में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक औरत मर्द के निकाह में ऐसी है जैसे सोने के पत्थरों से मुज़य्यन ताज बादशाह के सर पर, बादशाह के सर पे ताज, ऐसे नेक औरत की मिसाल बताई। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत अपनी हालत हमल से वबा हमल और दूध छुड़ाने तक ऐसी है जैसे इस्लाम के रास्ते में सरहदों की हिफाजत करने वाला, अगर इस हालत में इंतकाल हो गया तो शहीद के बराबर सवाब मिलेगा, शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। फरमाया जब किसी के यहाँ बच्ची की विलादत होती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की एक जमात भेजते हैं, फरिश्ते आकर सलाम करते हैं और अपने परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं कि एक ज़ईफ़ा दूसरी ज़ईफ़ा से निकली है। इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु की एक रवायत की गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में दाखिल होने में सबसे ज़्यादा सबकत करने वाली मेरी उम्मत की वो औरतें होंगी जो दीन के एतबार से दिलेर हों। एक जगह फरमाया बेहतरीन औरतें अंसार की औरतें हैं कि दीन समझने में यानी अहकाम शरीयत सीखने में शर्म व हया उनकी रुकावट नहीं बनती। हदीस शरीफ में आया कि जिसको नेक और दीनदार बीवी मिली तो अल्लाह ने आधे दीन के साथ उसकी मदद की, अब उसको चाहिए कि बकिया आधा दीन अल्लाह के तकवा से हासिल करे, अल्लाह के तकवा से हासिल करे। फरमाया कि बेवा औरत और मिस्कीन की भलाई के लिए कोशिश करने वाला ऐसा है जैसा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला या दिन भर रोज़े रखने वाला और रात भर तहज्जुद पढ़ने वाला, जो आदमी बेवा मिस्कीन की खबरगिरी करे। फरमाया कि हालत हमल में औरतों के लिए ऐसा अजर है जैसा कोई दिन भर रोज़ा रखने वाला और रात भर तहज्जुद पढ़ने वाला, आजजी करने वाला और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। जब किसी के यहाँ विलादत होती है, उसको दर्द होता है, तो उसका अजर व सवाब सारी मखलूक से मख्फी रखा गया, और बच्चे की पैदाइश के बाद जब माँ उनको दूध पिलाती हैं तो हर घूंट पिलाने पर एक जानदार को ज़िंदगी देने की तरह अजर व सवाब मिलेगा। और जब बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है, फरिश्ता शाबाशी से कहता है कि इन तकालीफ के बदले में आपके सब गुनाह माफ़ हो चुके हैं, अब फिर से अमल करो। अल्लाह, बड़े बड़े फजाइल हैं जो मर्दों को बाहर जाके बड़े बड़े मुश्किल काम करके मिलते हैं, और बहनों को, खवातीन को घर में बैठे बैठे मिल जाते, घर में बैठे बैठे मिल जाते। हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार साहब दावत बरकातहू, उन्होंने बयानात लिखे और उनके शागिर्दों ने उनको महफूज किया, और उसमें बहुत सारी काम की बातें, बहुत सारी काम की बातें, कुछ बातें पढ़ी जाएंगी ताकि हमें अपने घर वालों की कदर मालूम हो और महलों में, ख़ानदानों में बच्चे बच्चियों की इज्जत और उनमें दीनी जज्बा पैदा हो। हज़रत ने लिखा कि आलिम कोर्स में एक किताब पढ़ाई जाती है, जो भी आदमी आलिम बनता है दुनिया में उस किताब को ज़रूर पढ़ता है, उसका नाम है अकीदा तहाविया, बहुत मशहूर किताब है इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह अलैह की, तहावी शरीफ। ये किताब कैसे लिखी गई? इमाम साहब हदीस लिखवाते और उनकी बेटी उसका इमला करती, यानी उसकी डिक्टेशन लिख करके देती। इमाम साहब ज़बानी लिखवा रहे हैं, उनकी बेटी उसको लिख कर दे रही, किताब तैयार हो गई। ये किताब आगे चली, उससे अहादीस पढ़कर लोग आलिम बनते हैं, तो जितने लोग आलिम बने उनके इल्म में उस बेटी का हिस्सा भी मौजूद हो गया, और सारे लोग उस खातून के रूहानी शागिर्द हो गए, खातून के रूहानी शागिर्द हो गए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु मुफस्सरीन के इमाम हैं, ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा के शागिर्द थे, पर्दे के दूसरी तरफ बैठकर ये उनसे कुरान की तफसीर के नुकात पूछा करते थे। सहाबा कराम पर्दे में आकर आयशा रदी अल्लाह अन्हा से सीख कर जाते थे, और ये सिलसिला आगे तक चला। तो बहुत सारी अल्लाह ने खवातीन में ऐसी ऐसी खसूसियात रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से हुआ, तो खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने पूरा माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया, और वो दीन की खातिर खर्च हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे, तो एक दिन आप पर वही आई, तो आपने जिब्राइल अलैहि सलाम को अपनी असल शक्ल में देखा। जिब्राइल अलैहि सलाम के 600 पर थे, एक पर को फैलाएं तो मशरिक को ढांप लेता है, दूसरे को फैलाएं तो मगरिब को ढांप लेता है, इतना बड़ा उनका कद है कि पूरे आसमान को ढांप लेते हैं, और उनका चेहरा सूरज से ज्यादा रोशन और बर्क रफ्तार। मैं हजरत ने एक मिसाल लिखी कि अगर बारिश का कतरा जमीन पर गिर रहा हो और जमीन से एक हाथ ऊपर रह गया, बस बारिश का कतरा यहाँ पर है अभी गिरने वाला है, तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऐसी तेज रफ्तारी अता फरमाई है कि वो उतनी सी देर में कि ये कतरा जमीन पर गिरे वो सिदरतुल मुंतहा से आकर जमीन पर और वापस भी जा सकता, इतनी रफ्तार अता फरमाई। अभी साइंस को तो यही समझ में आया कि भाई असल बस रफ्तार की ये लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं। अल्लाह पाक फरमाए, अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई। अब इतने बड़े फरिश्ते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी असली हालत में देखा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खौफ सी कैफियत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। चुनांचा खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने फौरन कंबल उड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे डर है कि कहीं जान ना निकल जाए। पूछा कि क्या वाकया हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया सुनाया जिब्राइल अलैहि सलाम की आमद का, वही का। अब यहाँ जो पॉइंट जो बात समझने की है वो समझिए। शेख ने लिखा कि कोई आज की औरत होती तो ये हाल देखकर, घर में ऐसा हाल देखकर रोने पीटने बैठ जाती कि मेरे मियाँ पर यह असर हो गया, मेरे मियाँ ने जिन देख लिया, मेरे मियाँ पर किसी ने कुछ डर्ट कर डाला, मेरी जिंदगी का क्या बनेगा। फरमाया कि उनकी कुछ हालत ख़राब नहीं हुई, उन्होंने इतनी बड़ी बात सुन ली, लेकिन उन्होंने फिर इत्मीनान दिलाया। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इत्मीनान दिला रही हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबक है मुसलमान बहनों के लिए, माओं के लिए, कि घर में जब मर्द कोई आए और परेशानी हो तो कैसे तसल्ली देनी चाहिए। फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इत्मीनान रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी ज़ाया नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी रुसवा नहीं करेंगे, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, यही रिश्तेदारों का ख्याल करने वाले हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता उसको आप कमा कर देने वाले हैं, और आप मेहमान नवाजी करने वाले हैं, और आप तो दूसरों का बोझ उठाने वाले हैं, और आप तो नेक बातों में मदद करने वाले हैं। तसल्ली दे रही हैं, तसल्ली दे रही हैं, आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ सीखने की है, हम घरों में ऐसा माहौल, अच्छी बातें, घर वाले सब लोग अच्छी अच्छी बातें करें। जुबैदा, मलका जुबैदा तारीख में गुजरी हैं, हारून रशीद का वाकया, मलका जुबैदा का वाकया आता है। ये अपने वक्त की मलका थी, लेकिन इतनी नेक दिल थी, इतने अच्छे काम किए कि उनका शुमार बहुत नेक औरतों में होता है। अपने महल में उन्होंने 300 नौकरानियाँ यानी खादमाएँ रखी हुई थी, महल में 300 नौकरानियाँ रखी हुई थी। किस काम के लिए? हर एक जो है वो वजू करो, कुरान पाक की हाफिजा थी, कारियात थी, उनकी शिफ्टें उन्होंने बना दी थी कि तुम महल के फला फला कोने में जाओ और सब कुरान पढ़ती रहो दिन में, इस काम के लिए रखे थे। और महल के कोनों कोनों पर एक खादमा को बैठा दिया, हाफिजा को बैठा दिया, और उनका काम क्या था कि हर एक ने चार चार छः छः घंटा कुरान पाक की तिलावत करनी है। महल के हर कोने में जाके बैठो, कुरान पाक की तिलावत, तुम्हारी मुलाजमत, तुम्हारा काम है। एक शिफ्ट ख़त्म हो जाती तो दूसरी आ जाती, दूसरी ख़त्म हो जाती तो तीसरी आ जाती। 300 हाफिजात दिन रात महल के तमाम बरामदों में, कमरों में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करती थी। बादशाह का महल ना क्या हुआ, मदरसा हो गया। ऐसी ऐसी जो है बहनें और ऐसी नेक औरतें गुजरी हैं। दिल में लोगों की हमदर्दी इतनी थी कि लोग हज पर जाते थे तो उस जमाने में पानी नहीं मिलता था, तो जानवर मर जाते, लोग मर जाते थे। हाजी मक्का मकरमा पहुंचने से पहले दखल हो गया, पानी नहीं मिल रहा रास्ते में। मलका हज को गई, उन्होंने अपने शौहर से जो बादशाह थे फरमाइश की कि एक नहर बना दीजिए जो दरियाए फुरात यानी इराक से लेकर अरब तक हो, इतनी लंबी एक नहर बना दीजिए कि पानी हमारे वहां मुल्क से यहाँ आया करे। सुभान अल्लाह, उस जमाने में पत्थर तोड़ के और ऊंचे नीचे रास्ते हजारों किलोमीटर कहाँ से पानी पहुंचाना। मलका थी, उनके पास असबाब, उन्होंने कहा कि ऐसा कर दीजिए। चुनांचा एक नहर बनाई गई कि लोग जब हज को जाते हैं तो आज भी उसके कुछ हिस्से देखने में आते हैं। शेख ने लिखा कि कोई मलका तो ऐसी थी जिन्होंने अपने मियाँ से ताजमहल बनवाया, और किसी ने थी उन्होंने गुलशन आरा बाग बनवाया, और ये अल्लाह की बंदी ऐसी थी कि उन्होंने नहरे जुबैदा बनवाया। उस जमाने में जब पूछा गया कि मजदूर होंगे इतनी गर्मी में उसको तोड़ेंगे पत्थर को पहाड़ को, क्योंकि नहर पानी का रुख तो नीचा ही होना चाहिए, पानी ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता, कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो हर वक्त उसका रुकाव चाहिए, नीचे चाहिए, तो इतना कुदाल इतना तोड़ना सुरंगें और पहाड़, तो मालूम है कि जब कुदाल लगाई जाएगी एक एक जरब पर आप कितना देंगी। उन्होंने कहा कि एक कुदाल मारने पर अगर मुझे एक अशर्फी भी देनी पड़ी तो हम देंगे, ये बनाओ ये नहर, एक दफा कुदाल मारोगे तो एक अशर्फी दो, जो जमाने का सिक्का होता था। शेख ने लिखा कि क़यामत के दिन लाखों इंसान होंगे, परिंदे होंगे, जानवर होंगे, जिन्होंने पानी पिया होगा, सबके पानी पिलाने का अजर इस नेक खातून को जाएगा। मालूम हुआ कि दौलतमंद माहौल में रहकर भी खातून पाकबाज जिंदगी और नेक काम करा सकती है। शेख ने लिखा कि जिन घरों में बच्चों की उम्मीद हो, अल्लाह ताला मुबारक करे, खुशखबरी हो, अल्लाह सेहतमंद आफियत अता फरमाए, तो माँ को चाहिए कि नेक लोगों के वाकयात पढ़े, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में गौर करे, सीरत की किताबें पढ़े, जन्नत के बागात और जन्नत के बारे में सोचे, इसलिए कि माँ की सोच के बच्चे पर बायोलॉजिकल असरात होते हैं। जितनी अच्छी बातें सोचेंगी उतना बच्चे की नशोनुमा अच्छी होगी, उतना बच्चे की नशोनुमा अच्छी होगी। एक बुजुर्ग थे, उनकी औलाद सारी बहुत नेक थी, लेकिन एक बच्चा बड़ा नाफरमान और बेअदब किस्म का था। मेहमान आए, उन्होंने पूछा ये क्या माजरा है, तो बुजुर्ग रोने लगे, कहने लगे कि इसका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। एक मरतबा मेरे घर में फाका था, खाने को कुछ नहीं था, और बादशाह के महल में कहीं से बचा हुआ खाना हमारे पास आ गया, तो हम भूखे थे, मैंने गलती से वो खाया। एक दिन खाना खा लिया, बादशाह कहीं गया कहाँ का, और उसके ये असरात हुए कि ये एक बच्चा ना। अल्लाह हुक्म, शेख ने लिखा कि घर में चाहिए कि हलाल लुकमे का बहुत ख्याल रखे और पॉजिटिव थिंकिंग रखे, हर वक्त खुश रहना चाहिए। अरबों के अंदर ये बात बहुत मारूफ थी कि जो माँ खुश रहेगी अगर उसका बेटा हुआ तो बहुत बहादुर बनेगा, और बेटा बहुत कम रोने वाला होगा, खुश रहे खुश रहे। और खुश रहने का ये है कि आदमी अल्लाह की नेमतों को सोचे, अल्लाह की नेमतों को सोचे। शेख ने किस्सा लिखा, किस्से से बात समझ में आती है। एक औरत बहुत गरीब थी, उसके जूते भी फट गए थे, एक घर से दूसरे घर जा रही थी और सोच रही थी कि मेरा मुकद्दर अल्लाह ने कैसा लिखा कि मेरे पैर में टूटा हुआ जूता है, जूता भी ठीक नहीं। थोड़ी देर आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि एक दूसरी औरत आ रही है, पाँव से माजूर है, उसके तो पाँव ही नहीं। उनके दिल में असर हुआ कि मैं तो जूते टूटने का शिकवा कर रही थी, ये तो अल्लाह की बंदी है, इसकी टांगे भी नहीं। शेख गाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे, नए कपड़े पहने, नहाए धोए, मस्जिद की तरफ जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ, जैसे घर वाले सफाई करते हैं, ऊपर किसी ने सफाई करके छत से कुछ गंदगी और राख गली में फेंक दी, शेख के सर पर सारी आ गई, सारे कपड़े खराब, राख पड़ गई, कपड़ों भी खराब हो गए, लोग हैरान। अब शेख को गुस्सा आएगा, लेकिन शेख कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं तो इस काबिल था कि मेरे सर पर आग के अंगारे बरसाए जाते, फकत मेरे सर पर राख डालकर मामला झुका दिया। उस बात को टाल दिया, यानी हर परेशानी मुश्किल की चीज़ को कोई अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग से रफा दफा कर दिया, और कोई अल्लाह की बड़ाई अच्छी बात सोची। शेख ने लिखा कि अगर कोई आदमी रेलवे स्टेशन पर है और दिल चाहता है कि अच्छी चाय पिए और अच्छी चाय नहीं मिलती तो कभी गमजदा ना हो, ये समझे थोड़ी देर की बात है, अपने घर जाएंगे, अभी अपने घर जाएंगे चाय मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह वाले सोचते हैं कि दुनिया गुजरगा मुसाफिर की मानिंद है, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मकान, अगर इंसान को यहाँ खुशियां ना मिली तो इंशाल्लाह जन्नत में जाकर मिली। उस्ताद शागिर्द को पढ़ाते थे जलालैन शरीफ तफसीर की किताब, मैं फरमाया कि अगर शागिर्द पूरी सीख गया तफसीर की किताब तो मेरे लिए आधा किलो खुशी है, और अगर बिल्कुल नहीं सीख पाया, कोशिश किया मगर सीख नहीं पाया, तो मेरे लिए पूरा 1 किलो खुशी है कि मुझे जन्नत में ज्यादा बदला मिलेगा। हर किसी यानी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज से बदल दे, काम हो गया तो आधा किलो सवाब, नहीं हुआ तो 2 किलो उधर मिलेगा। राबिया बस गया रहमतुल्लाह अलैहा, वो जा रही थी, उनको ठोकर लग गई तो उनके पैर में से खून निकला, तो वो मुस्कुराने लगी, उनको खुशी हुई। लोगों ने पूछा क्या, उन्होंने कहा इसमें मुझे जो जो सवाब मिला इस पर सबर करने का, उसको देख के मुझे खुशी हुई। ऐसा आदमी की पॉजिटिव थिंकिंग, उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फायदा होता है। अल्लाह पाक हम सबको पॉजिटिव थिंकिंग अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल, ये बहुत अच्छी किताब है शमाइल तिरमिजी, ये मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह किताब है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सारी चीज़ें हैं, तिरमिजी शरीफ की रवायात हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक कैसे नज़र आते थे आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के बालों का बयान, बालों में कंघा करने का बयान, और आपके सुरमे का बयान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का जिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन शरीफैन यानी जूतों का जिक्र, अंगूठी मुबारक का जिक्र, तलवार का जिक्र, इमामे का जिक्र, आपके चलने का जिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकिए का जिक्र, खाना खाने का तरीक़ा, रोटी और सालन का जिक्र, और खाने और खाने के बाद क्या फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला कैसा था, कौन से फल खाते थे, खुशबू कैसी लगाते थे, बात कैसे करते थे, हंसते कैसे थे, मजाक किस तरह करते थे, सोते किस तरह थे, इबादत किस तरह करते, रोज़े कैसे रखते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था, अख़लाक़ व आदात कैसे थे, आपकी हया कैसी थी, आपकी उम्र शरीफ किस तरह गुजरी, आपका इंतकाल किस तरह हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का तज़किरा, ये किताब है। अब ये किताब कोई पढ़े और वैसा इंसानियत के लिए सबसे अच्छा पैकर जो हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप कैसे थे क्या करते थे, क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये कोर्स है, पढ़ाई जाती है आलिम कोर्स में, शमाइल तिर्मिज़ी अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में मिलती है, एक कलेक्शन ऑफ अहादीस अबाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें से एक दो रवायतें, अबू इसहाक कहते हैं किसी आदमी ने बर्रा रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तलवार की तरह शिफाफ था, उन्होंने कहा नहीं बल्कि बदर यानी पूरे चांद की, पूरे चौदहवीं के चांद की तरह रोशन गोलाई लिए हुए था। शेख ने लिखा कि ये तो बस तशबी है, वरना एक चांद क्या, हजार चांद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नूर नहीं ला सकते। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं एक मरतबा चांदनी रात में मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जोड़ा पहनकर, इन सुर्ख में धारियां होंगी, पूरा सुर्ख तो बाज लोगों ने कहा कि नहीं होगा, सुर्ख धारियां होंगी या जो भी सूरत हो, फरमाया कि मैं कभी चांद को देखता और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर आखिर मैंने ये फैसला किया, जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कभी मैंने चांद को देखा कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मुआजना कर रहा, कंपेयर कर रहे हैं, आखिर में मैंने ये फैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से कहीं ज्यादा हसीन और जमील और मुनव्वर, चांद से ज्यादा चमकदार, बार बार देखते हो फैसला। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हसीन और खूबसूरत थे गोया चांदी से, सिल्वर से आपका बदन मुबारक ढाला गया है, आपके बाल मुबारक कदरे हमदार और घुंघरियाले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन शरीफ से खुशबू महकती थी, बदन से खुद बहुत खुशबू आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक की खुशबू। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे सोने की हालत में, आपके जिस्म मुबारक से पसीना निकल रहा था, उम्मे सुलेम रदी अल्लाह अन्हा उन्होंने उसको एक शीशी में जमा करना शुरू किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई और पूछा क्या हो रहा है, तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने कहा कि हम इसको अपनी खुशबू में मिलाएंगे, ये सबसे ज़्यादा मुअत्तर है, आपका पसीना इससे हम खुशबू बनाएंगे, ये सबसे ज़्यादा मुअत्तर है। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात, सीरतें और इन चीज़ों का चर्चा होना चाहिए सुबह शाम सुबह शाम। ये हलका तो भाई एक घंटे का, इसमें तो सारी चीज़ें तो हो नहीं सकती, बस किताबों के इशारे हो सकते हैं, ये भी पढ़िए ये भी पढ़िए, सुबह शाम आदमी लग जाए। अब दरूद शरीफ के कुछ फ़ज़ाइल बताकर फिर उसके बाद दुआ की तरफ चलेंगे। दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, मेहनत और तालीम की वजह से हम सबको ईमान मिला, वरना हम कुफ्र और शिर्क में रहते और नाफरमानी में रहते और कितने साल तक जहन्नम में रहते। इसलिए अल्लाह ताला की इबादत हम तस्बीह जिक्र अस्कार के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद व सलाम भेजना चाहिए। दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अकीदत और मोहब्बत का हदिया है और मोहब्बत का इजहार है, और इससे इबादत में लुत्फ आता है, आदमी मुत्तकी बन जाता है, दीन और दुनिया ठीक हो जाती है, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिलती है, वसवसे ख़त्म हो जाते हैं, इबादत की तरफ शौक़ पैदा होता है और अल्लाह की मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होती है, मुरादें पूरी होती हैं, आफतों से हिफाजत होती है, रिस्क में इजाफा होता है, गुरबत दूर होती है, कारोबार में बरकत होती है, दिल की तस्कीन रहती है, मौत के वक्त आसानी होती है, दुनिया से जाते हुए ईमान पर खात्मा, कब्र के अजाब से नजात, दिल नरम होना, अल्लाह राजी होना, कब्र में राहत मिलना, मैदान हशर में शिफात मिलना, क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब और बेमिसाल इनाम और एजाज। हज़रत ने लिखा दरूद शरीफ के जितने फ़ज़ाइल बताए जाएँ कम हैं, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वक्त कम है, एक दो दरूद शरीफ पढ़े जाते हैं। और एक दिन इस सबक में अगली दफ़ा कोई चाहें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक भी पढ़े जाएंगे, और उन नामों की खासियत शेख ने लिखी कि जो इनको पढ़े मोहब्बत से तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मिलती। आज का एक दरूद शरीफ है, अगर कोई लिखना चाहे, छोटा सा दरूद है, लिख लें और याद कर लें, काम आएगा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तबीबिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिही व सहबिही व सल्लम। ऐ अल्लाह दरूद भेजिए हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो दिलों के तबीब और उनकी दवा हैं, और जिस्म की आफियत और उनकी शिफा हैं, और आँखों का नूर और उनकी चमक हैं, और आपकी आल और अस्हाब पर दरूद व सलाम भेजिए। शेख ने लिखा, ये किताब है मकाम दरूद शरीफ, मौलाना आमिर साहब नामत बरकातुम, और उन्होंने लिखा और इसकी उन्होंने तस्दीक किताब के बारे में शेख अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है नोट, और ये शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। ये अच्छी किताब है, इसका दरूद शरीफ फजीलत लिखी है। अब ये बुज़ुर्गों के तजुर्बात हैं, कोई हदीस शरीफ नहीं है, बुज़ुर्गों के तजुर्बात हैं कि ये दरूद शरीफ पढ़ने से रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिलती है। ख़ासकर किसी को शैतानी वसवसा बहुत तंग करता हो और नेक कामों में रुकावट डालता हो तो ये दरूद कसरत से पढ़े, फ़ायदा होगा, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तबीबिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिही व सहबिही व सल्लम। اللهم صل على سيدنا محمد طبيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللہ پاک ہم سب کو درود شریف کی کثرت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں ایک آدمی اللہ کے خوف سے رو رہا تھا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا، مگر اللہ اور آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ کے خوف سے رونا، اتنا ہی فضیلت ہے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں گناہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کر لو۔ اس نے کہا میں پھر گناہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر استغفار کر لو۔ اس نے کہا میں پھر گناہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرتے جاؤ، حتیٰ کہ شیطان مایوس ہو کر تمہیں چھوڑ دے. استغفار کرتے جاؤ حتیٰ کہ شیطان مایوس ہو کر تمہیں چھوڑ دے. اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک سے دل کے دھیان کے ساتھ اپنے لیے, پوری امت کے لیے, سب کے لیے دعائیں مانگے. آدمی استغفار کرے, توبہ, استغفار, اور اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی حاجتیں مانگے. یہاں پر تعلیم کے واسطے کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں, جس کے دل میں جو جو حاجات ہیں وہ مانگے. اللہ پاک بہت دینے والے. کہتے آدمی جھولی پھیلا کے مانگے, یعنی پیالہ بنائے, پیالہ لاؤ, فقیر کی طرح بنو, شکل بناؤ, پھر اللہ سے مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ, یا رحمان, یا کریم, یا ذل جلال والاکرام, یا حی یا قیوم, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذل قوة المتین, و یا راحم المساکین, و یا ارحم الراحمین, رحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهد الناس جميعا. يا الله, يا رحمن, يا كريم, يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم. اے اللہ, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ, امت کو بخش دیجیے. اے اللہ, امت کی غلطیوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ, پوری امت میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. اے اللہ, جو لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں ان کو نافع نفع دینے والا علم عطا فرمائیے. اے اللہ, جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں ان کو آسان رزق عطا فرمائیے. اے اللہ, امت کے خوف کو امن سے بدل دیجیے. اے اللہ, امت کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے. اے اللہ, پوری امت کو نیکیوں کا شوق, آخرت کی دوڑ لگانے کا جذبہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ, ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے. اے اللہ, اے اللہ, یا اللہ, یا رحمان, یا کریم, یا ذل جلال والاکرام, یا قدیم الاحسان, یا کثیر المعروف. اے اللہ, آپ سب کچھ دیکھنے والے, سب کچھ سننے والے ہیں. اے اللہ, سب ڈرنے والوں کی پناہ آپ ہیں. اے اللہ, ننھے ننھے بچوں کو روزی پہنچانے والے ہیں. اے اللہ, آپ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بھی جوڑ دیتے ہیں. اے اللہ, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں محتاج اور آفت زدہ کی طرح سوال. اے اللہ, دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائیے. اے اللہ, ہدایت, مغفرت, اونچے درجات عطا فرمائیے. اے اللہ, بزرگی والے ہیں, عظمت والے ہیں, آسمان اور زمین کے نور ہیں, آسمان اور زمین کو قائم رکھنے والے ہیں, بے چینوں کو چین دینے والے ہیں, غم زدہ کو راحت پہنچانے والے ہیں, دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں, بیماریوں سے شفا دینے والے ہیں. اے اللہ, ہماری ہر حاجت کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ, اپنے خزانے سے یا اللہ ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما دیجیے. اے اللہ, تمام مصیبتوں, آفتوں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ, ہمارے بڑوں کو, چھوٹوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بڑوں کو, اے اللہ, سب کے دل کو منور کر دیجیے. یا اللہ, ایمان عطا فرمائیے, نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ, جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیے. اے اللہ, جو لوگ حج اور عمرے کو تشریف لے جا رہے ہیں, اے اللہ, ان کے لیے حج کرنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ, حج کو قبول فرما لیجیے, اس میں ہر قسم کی مشکلات سے بچا دیجیے. اے اللہ, یا رحمان, یا کریم, یا ذل جلال والاکرام, یا حی یا قیوم. اللہ, آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں کعبہ شریف پہ حج کے دنوں میں, رمضان میں, مساجد میں, رات کے آخری پہر میں, اے اللہ, آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں دنیا میں اترتی ہیں, اے اللہ, ہم ان میں سے کسی کا حق نہیں رکھتے, لیکن ہم محتاج ہیں. اے اللہ, اپنی رحمت سے, کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ, جو حاضرین حضرات, ہمارے بھائی بہن جو سن رہے ہیں, اے اللہ, ان کے دلوں میں جو جو نیک خواہشات ہیں, حاجات ہیں, اللہ, ان سب کو غائب سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ, ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ, ہر کام میں صدق اور اخلاص عطا فرما دیجیے. اے اللہ, اخلاص, اکرام, ثواب و اچھی باتیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ, عجب و کبر اور بری باتوں سے, یا اللہ, شیطان و نفس کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے، بچوں کی، بڑوں کی، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ زمانے کے تمام شرور سے، فتن سے اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما دیجیے، صحت میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ دنی میں برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے ربا کے آخرت کے کاموں میں، جنت کی دوڑ میں یا اللہ ہمارے لیے وقت فارغ فرما دیجیے. یا اللہ اس میں برکت ڈال دیجیے. اے اللہ انسان کی زندگی کی جو بہترین شکل ہو سکتی ہے صبح سے شام تک، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کی سیرت ہے، اے اللہ ہماری زندگی میں بھی عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.